लेकिन जापान वाली मीटिंग की डिटेल्स उसने देव को चेक करने के लिए दी थी, ताकि देव के साथ देने से उसके दोनों काम एक साथ हो जाएं, क्योंकि आज अरमान की इम्पोर्टेंट मीटिंग थी जो एक जापान के क्लाइंट्स के साथ होनी थी और एक फ्रांस के क्लाइंट के साथ होनी थी। फ्रांस की मीटिंग की डिटेल्स तो वो खुद पर्सनली देख रहा था और जापान वाली मीटिंग की डिटेल्स उसने देव को देखने के लिए दी थी। तो देव ने उसे बोला, ऑलरेडी सारी तैयारी हो गई है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। अरमान जल्दी से लैपटॉप में घुस चुका था, जैसे लैपटॉप ही उसकी दुनिया हो, क्योंकि उसे फटाफट से अपने सारे काम कंप्लीट करने थे। इस बीच उसे आस्था का ख्याल ही नहीं रहा कि उसने आस्था को चेंजिंग रूम में चेंज करने के लिए भेजा था। वहीं दूसरी ओर ध्रुव, आहान, सुमित, आकाश चारों के चारों अपनी शॉपिंग में पूरी तरह से खो चुके थे और उन्होंने कितनी ही सारी शॉपिंग भी कर ली थी। लगभग डेढ़ घंटे बाद अपनी पूरी शॉपिंग कंप्लीट करने के बाद चारों अपने हाथों में शॉपिंग बैग्स लेकर मुस्कुराते हुए एक दूसरे की शक्ल को देखने लगे। यार वैसे कुछ भी कहो, आज कम से कम आस्था भाभी की वजह से हम इस तरह से शॉपिंग करने तो आए हैं, वरना हमें कई दिन हो जाते हैं कि हम सभी भी एक साथ शॉपिंग ही नहीं कर पाते। डिज़ाइनर घर पर कपड़े डिज़ाइन वगैरह कर ही घर पर ही कपड़े भिजवा देते हैं, लेकिन आज खुद से शॉपिंग करके मज़ा आ रहा था। कहीं ना कहीं चारों के लिए ये एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि वो लोग कभी शॉपिंग करने आए ही नहीं थे। अगर उन्हें कभी सूट वगैरह कुछ बनवाना होता तो वो सब डिज़ाइनर को कॉल किया करते थे और डिज़ाइनर उनके मन मुताबिक कपड़े तैयार करके घर पर भिजवा दिया करते थे। अब अरमान अपने लैपटॉप पर अपने आईपैड के साथ पूरी तरह से बिजी हो गया था, क्योंकि जब भी अरमान अपना काम किया करता था उसे अपने आसपास क्या हो रहा है उसका कोई होश ही नहीं रहता था। वो तो बस उस वक्त पूरी तरह से काम में खो जाया करता था। और देव सावधानी से एक तरफ खड़ा होकर सर झुकाकर उसके पास खड़ा हुआ था, क्योंकि देव को तो इस तरह से खड़े होने की आदत थी। कितने घंटे तक वो इसी तरह से अरमान के केबिन में खड़ा रहता था। जैसे ही उन सबकी शॉपिंग कंप्लीट हो गई और वो सब सीधा अरमान और आस्था के पास आने के लिए निकल गए थे, और जल्दी ही वो लोग अरमान के आसपास खड़े हो गए थे। वो सारे चारों के चारों अरमान को इस तरह से काम करता हुआ देखकर हैरान हो गए। जिस तरह से देव अरमान के बराबर में सर झुकाकर खड़ा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि अरमान इस वक्त मॉल में ना होकर ऑफिस में ही बैठा हुआ है और अपना काम कर रहा था। तब उन चारों का ध्यान अरमान से थोड़ी ही दूरी पर खड़ी कितनी ही सारी लड़कियों पर गया। कितनी ही सारी लड़कियां अरमान को घूर घूर कर देख रही थीं और मुस्कुराकर फुसुर फुसुर कर रही थीं। कुछ लड़कियां तो अरमान को पहचानने की कोशिश कर रही थीं कि आखिरकार उन्होंने उसे कहाँ देखा है, क्योंकि अरमान के काफ़ी कम इंटरव्यूज़ दिया करता था और उसके बारे में काफ़ी कम खबरें छपा करती थीं। अरमान जो चाहता था वही खबरें अपने बारे में रिलीज़ किया करता था, वरना अरमान से बिना पूछे किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उसके बारे में किसी तरह की कोई खबर पेपर में या न्यूज़ में आ जाए। तब आहान का ध्यान आस्था की ओर गया। आस्था कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। अगर अरमान भाई यहाँ काम कर रहे हैं तो आस्था भाभी कहाँ है? तो इसीलिए अरमान के सामने वो कितनी देर तक खड़े रहे, और उन्होंने देखा कि अगर उन्होंने अरमान को इस वक्त आवाज़ नहीं दी तो वो बस अपने काम में पूरी तरह से खोया रहेगा और पूरी शाम यही काम में लगा देगा, लेकिन सर उठाकर उनकी सबकी ओर नहीं देखेगा। तो इसीलिए जल्दी से आहान बोला, अरमान भाई, अरमान ब्रो। अरमान ने उसकी ओर एक नज़र उठाकर देखा, उसके बाद फिर काम करने लगा और काम करते करते ही कहा, बोलो क्या बात है? तब आहान ने पूछा, आस्था भाभी कहाँ है? अब जैसे ही आहान ने एकदम से आस्था का नाम लिया, देव, सुमित, आकाश और ध्रुव भी हैरान हो गए और उन्हें भी आस्था का ख्याल आया कि आस्था कहीं दिखाई नहीं दे रही है। वहीं अरमान के हाथ जो बड़ी ही तेजी से लैपटॉप पर चल रहे थे वो भी रुक गए और एक पल को अपनी नज़रें लैपटॉप पर से हटाकर वो आहान की ओर देखते हुए बोला, आस्था कहाँ है? मतलब शॉपिंग कर रही होगी ना, उसको जाकर वहाँ देखो, मुझे क्या पता वो कहाँ है। अब जैसे ही अरमान ने बड़ी ही रैंडम तरीके से ये कहा, सबके सब अरमान के इस तरह से केयरलेस होने पर और बिल्कुल इमोशनलेस होने पर हैरान थे। बीवी दिखाई नहीं दे रही और ये जनाब लापरवाही से जवाब दे रहे हैं, ध्रुव ने सोचा। अब चारों ने मन ही मन में सोच रहे थे कि क्या भाई के मन में आस्था भाभी के लिए इतने से भी इमोशंस नहीं है? भाभी की कोई परवाह नहीं है? उन्हें इस बात की खबर भी नहीं है कि पिछले डेढ़ घंटे से आस्था भाभी यहाँ है ही नहीं? सबके मन में अलग अलग सवाल चल रहे थे, लेकिन फिलहाल आस्था को ढूंढना ज्यादा इम्पोर्टेंट था। फिलहाल जल्दी से वो चारों कपड़ों वाले एरिया में गए और वहां जाकर उन्होंने अच्छी तरह से देखना शुरू कर दिया। वहां पर एक से दो सेल्स गर्ल्स खड़ी हुई थीं। उनसे भी उन्होंने पूछा था कि यहां पर जो लड़की शॉपिंग कर रही थी वो कहाँ है, लेकिन किसी ने भी उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उन्हें आस्था के बारे में कोई खबर नहीं थी। अब तो चारों पूरी तरह से परेशान हो गए थे। देव भी आस्था को लेकर परेशान था, लेकिन उस वक्त वो वहां अरमान के पास से नहीं हट सकता था, क्योंकि अरमान देव का दिया हुआ काम भी चेक कर रहा था। तो कहीं ना कहीं देव को इस बात का डर था कि अरमान को कुछ समझ में नहीं आया, और उस वक्त उसने देव को अपने पास नहीं पाया तो अरमान उस पर गुस्सा कर सकता था, तो इसीलिए वो वहीं हाथ बांधकर खड़ा रहा। हालांकि मन ही मन में उसे भी आस्था की फिक्र हो रही थी, पर वो जाहिर नहीं कर रहा था,
क्योंकि आस्था उसकी बहन जैसी थी और आस्था ने उसे पहली बार भाई कहकर पुकारा था। वो मन ही मन बस उसके लिए प्रार्थना कर रहा था कि वो ठीक हो। वहीं दूसरी ओर चारों ने हर तरफ देख लिया था और उन्हें आस्था कहीं भी दिखाई नहीं दी। तब वो सब हैरान परेशान हो गए। तब आकाश परेशान होकर कहने लगा, यार ये अरमान ऐसे कैसे कर सकता है? इस तरह से उसने आस्था को शॉपिंग करने के लिए ऐसे कैसे यहाँ पर छोड़ दिया, जबकि हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जगह उसके लिए नहीं है और उसे मॉल में शॉपिंग करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तब सुमित ने अगले ही पल बोला, शायद तुम ठीक कह रहे हो। हमने ही बेवकूफी की है जो उन दोनों को हमने अकेला छोड़ दिया। हमें लगा था कि कुछ पल वो दोनों साथ रहेंगे तो हो सकता है कि अरमान के मन में आस्था के लिए कोई फीलिंग्स जन्म ले सके। लेकिन यहाँ तो आस्था का ही पता नहीं, कहाँ गई होगी? इतना बड़ा मॉल है, आस्था को कहाँ ढूंढे हम? ध्रुव ने कहा, भाभी तो कहीं नहीं मिल रही है। चारों के चेहरे पर निराशा नजर आ रही थी और जल्दी से ध्रुव बोला, मैं अब अरमान भाई से पूछकर आता हूँ, शायद उन्हें पता हो कि आस्था भाभी कहाँ है।